Kamanagi Gopinata Shira Kaila Kuri. Shira Laha E Yara Nama Marva Puri. Shira Laha E Yara Nama Marva Puri. Kamanagi Gopinata Shira Kaila Kuri. Shiraha e yara nama marva puri. Kamalagi Gopinata Shira Kaila Turi. Translation. Holding the pot of sweet rice, the priest called, "Will he whose name is Madhavanapuri please come and take this pot? Gopinath has stolen this pot of sweet rice for you."
Anuvad. Veh pujari kheer paat pakad ke pukarne laga. Jiska naam Madhavendra Puri ho, veh aakar ye paatr le jaye. Gopinath ne tumhare liye is paatr ki chori ki hai.
Prabhupada Shri Prabhupada ki jai. The difference between the absolute truth and relative truth is explained here.
Yahan par param satya tatha sapeksh sat ka antar batlaya gaya hai.
That's an interesting statement. Prabhupada is mysterious, you know.
Ye bahut hi rahasyamayi baat hai yahan pe Srila Prabhupada ne jo batayi hai.
Lord Gopinath has openly declared here that he is a thief. Jai Hariba.
Bhagwan Gopinath ne yahan spasht kaha hai ki ve chor hain.
He had stolen the pot of sweet rice, and this was not kept a secret, because his act of stealing is a source of great transcendental bliss.
उन्होंने खीर पात्र चुराया था, किंतु इस बात को छिपाया नहीं, क्योंकि यह चोरी का कृत्य परम दिव्य आनंद का स्रोत है.
In the material world, theft is criminal, but in the spiritual world, the Lord's stealing is a source of transcendental bliss.
भौतिक जगत में चोरी करना अपराध है किंतु आध्यात्मिक जगत में यही दिव्य आनंद का स्रोत है.
Mundane rascals who cannot understand the absolute nature of the personality of Godhead sometimes call Lord Krishna immoral, but they do not know that his seemingly immoral activities, which are not kept secret, afford pleasure to the devotees.
संसारी धूर्त जिन्हें भगवान की परम प्रकृति का ज्ञान नहीं है कभी कभी कृष्ण को अनैतिक भ्रष्ट कहकर पुकारते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऊपर से अनैतिक लगने वाले कार्य जिन्हें गुप्त नहीं रखा जाता भक्तों को असीम आनंद प्रदान करने वाले होते हैं.
कृष्ण फेमस एज अ थीफ एंड दिस इज वेरी क्लियरली डिस्क्राइब्ड थ्रू आउट द शास्त्र.
भगवान कृष्ण चोर के रूप में भी बताए जाते हैं, शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है.
नॉर्मली बीइंग अ थीफ इज something sinful.
चोरी करना बहुत पापमय कार्य होता है.
But you have to understand the principle. Where does the stealing propensity come from in this material world?
परंतु आपको ये जानना पड़ेगा कि चोरी करने की प्रवृत्ति इसका स्रोत कहाँ से आता है, कहाँ पे है?
Because the supreme Lord is a thief.
क्योंकि जो परम सत्य हैं, वह चोर हैं.
Therefore, his perfect part and parcels. They also have tendency to be a thief. This is the principle.
इसलिए जो उनके पूर्ण विभाग हैं, जो उनके अंश हैं, उनके अंदर भी ये चोरी करने की प्रवृत्ति है. ये बहुत ही प्राकृतिक है.
But in the Bhagavad Gita is clearly explained that this material world is compared to a banyan tree next to water.
भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है जो ये भौतिक जगत है एक बनियान ट्री के समान बताया गया है.
So oftentimes there may be a lake.
कई बार हम देखते हैं जैसे तालाब है.
And supposing there is a banyan tree on the shore of the lake.
और तालाब के किनारे ही एक बहुत बड़ा वृक्ष है.
So the reflection is on the water.
जो उसकी परछाई है पानी के अंदर.
It is not the real thing.
वो वास्तविकता नहीं है, सत्य नहीं है.
But especially of if the wind is blowing, supposing it's in a windy place, if the wind is blowing, there will be ripples in the water.
और मान लीजिए अगर वहां पे हवा चल रही हो तो पानी के अंदर बहुत सारे लहरें उठेंगी.
Then the image of the tree will be, you could say, aborted, or it will be the word that we are using for this material world, that we, the Shastra and the Acharyas are using, perverted. So when the wind is blowing and the ripples are on the water, then the image of the tree becomes distorted.
और जब हवाएं चल रही हों और पानी की लहरें हिल रही हों तो उसके अंदर जो वृक्ष की परछाई है वह बिगड़ जाएगी.
Not even a pure mirror.
एक शीशे के समान नहीं.
You look at a reflection on the mirror, if it's clean, then it's supposed to give you a perfect image.
अगर शीशे पे परछाई देखें आपने तो अगर शीशा पूरा साफ है तो बिल्कुल परफेक्ट इमेज आएगी.
Of course, if the mirror is covered by dust, you don't get a perfect image.
और अगर उसी शीशे पे अगर धूल जमी हुई है तो जो हमारी परछाई है उसके अंदर वह हम नहीं देख पाएंगे.
Devotee mirrors are often covered by smeared tilak.
और जो भक्तों के जो शीशे होते हैं कई बार तिलक से लगे होते हैं.
True, isn't it? The mirror, somehow or other, the tilak gets smeared all over the mirror. Every day I have to clean the tilak off the mirror.
किसी तरीके से जो शीशे पे भक्तों के चंदन फैल जाता है और हमें कुछ समय बाद बार बार उसको साफ करना पड़ता है.
So the accumulation of dust on the mirror, that is compared to the accumulation of these lusty desires and material desires on the heart. It is compared specifically to a mirror and dust.
जो शीशे के ऊपर धूल जमी हुई है उसको तुलना की गई है इस धूल की जो एक मनुष्य के मन के ऊपर जितनी कामुक इच्छाएं होती हैं उनसे.
ओरिजिनल इमेज कैन नॉट बी अंडरस्टूड. द थिकर द डस्ट इज समटाइम्स मे बी मड समटाइम्स स्टूल सम यू नो हैवी कंटेमिनेशन देन द मोर कंटेमिनेशन इज देन इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू सी द ओरिजिनल इमेज समटाइम्स बैड कंटेमिनेशन यू कैन इवन सी द ओरिजिनल व्हाट टू स्पीक ऑफ डिस्टॉर्शन यू कैन इवन सी द ओरिजिनल इमेज.
और जितनी मोटी धूल की परत होगी शीशे के ऊपर उतना हम अपनी परछाई को नहीं देख पाएंगे. बिगड़ी हुई परछाई देखने की बात तो दूर, वो परछाई दिखेगी ही नहीं अगर धूल की परत बहुत मोटी हुई.
Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says, you're chanting every morning.
इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है हम हर सुबह इसका उच्चारण करते हैं.
Everyone, please.
हर कोई साथ में उच्चारण कीजिए.
जयतोदार परमार्जना
प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वासनपदं परं विजयते श्रीकृष्ण
संकीर्तनं. Of course, the Sikh Shastika is so deep, we can't take, a 30-second purport to even one shloka of the Sikh Shastika.
Sikh Shastikam ka tatparya, halanki jo iska tatparya hai, vah itna gehra hai, hum 30 second mein iski kya charcha kar payenge.
In South Africa, I was asked to give a seminar on Sikh Shastika.
Maharaj bata rahe hain ki South Africa mein unse nivedan kiya gaya tha कि शिक्षाष्टकम पे एक सेमिनार दें.
It was very nice. About 30 people came especially for the seminar.
और ये सेमिनार बहुत ही अच्छा गया, इसमें 30 भक्त आए.
So I had 4 hours to give the purport to शिक्षाष्टकम.
और महाराज बता रहे हैं उनके पास 4 घंटे थे इस शिक्षाष्टकम के तात्पर्य को समझाने के लिए.
I spent most of my time just on the first shloka.
और जो सबसे ज्यादा समय है पहले श्लोक पे महाराज ने बिताया.
Then as when I had about 45 minutes remaining.
और जब 45 मिनट बचे थे.
So I mean I didn't spend 3 hours on the first shloka, but I mean I spent a lot of time on the first shloka because it is so important.
हालांकि 3 घंटे नहीं बिताए पहले श्लोक पे, परंतु अधिकतर समय पहले श्लोक के तात्पर्य को समझाने में लगाए क्योंकि ये इतना आवश्यक है.
realized I was running out of time, so I had to speed it up.
और जैसे कि समय निकलता जा रहा था इसलिए मुझे बोलना पड़ा और अन्य श्लोकों पर.
But what to speak of 4 hours, one could spend 4 days or more on Shikshastaka alone. It is so compact.
और 4 घंटे की बात थी तो क्या है, इस पर 4 दिन भी बोला जा सकता है क्योंकि शिक्षास्त्र में इतना कुछ है.
Our entire process is how to clean the heart. That is the entire process given by Mahaprabhu himself personally and the acharyas. How to clean the heart.
हमारी जो पूरी की पूरी विधि है वे इसी की है कि हम कैसे हृदय को साफ करें, जो महाप्रभु ने और हमारे आचार्यों ने जो हमें विधि दी है इसी के बारे में बताया है, हृदय को साफ करें.
This way we understand that the material world is the perverted reflection. So that word perverted, it's a strong word actually, very perverted. Somebody is called a pervert in the West, they're considered really disgusting. So and so, he's a pervert. It's considered very disgusting actually.
ये जो भौतिक जगत है ये एक विकृत छाया है, और ये जो विकृत शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है. पाश्चात्य देशों में विकृत शब्द का जो अर्थ होता है,
इवन द मीट ईटर्स एंड द फोर्निकेटर्स,
बहुत घृणित.
इवन द मीट ईटर्स एंड द फोर्निकेटर्स एंड द इंटॉक्सिकेशन टेकर्स ऑफ द वेस्ट, इफ दे से समबडी इज अ पर्वर्ट, the purport of their statement is they consider that person to be fallen and twisted and sick. That's how it's used in the West, perverted. Very sick is the purport by Western conception, but it applies Eastern conception, North South conception also. Sick, perverted, twisted, these are the meanings of perverted.
अगर पाश्चात्य देशों में कोई जो मांसाहार करता है, धूम्रपान करता है, एक ऐसा व्यक्ति भी अगर ये विकृत शब्द इंग्लिश में परवर्टेड कहलाया जाता है, अगर इसको किसी व्यक्ति को इस शब्द से किसी व्यक्ति को संबोधित करता है तो उसका अर्थ है कि ये बहुत ही घृणित व्यक्ति है, बहुत ही बीमार व्यक्ति है, बहुत ही गड़बड़ है, दरपिरा व्यक्ति है.
Of course, there's probably a larger population of really sick perverts in the West than in India. But don't worry, now the population of perverts in India is increasing daily. Don't worry, they won't get left behind. That's progress, right? Progress.
हालांकि जो पाश्चात्य देश में जो अधिकतर लोग हैं वह ऐसे घृणित लोग के उसके अंदर दायरे के अंदर ही आते हैं, परंतु घबराइए मत, अब जो भारत की जो गणना है वह भी अब प्रगति पे है. अब भारत के जो लोग हैं वह भी अब
if America is the paradise of the world,
अगर अमेरिका को इस संसार का स्वर्ग कहा जाए,
and India should follow the example of America, certainly.
और जो भारत है उसे अमेरिका को अमेरिका के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए,
then India should also be full of perverts.
तो भारत भी पूरे घृणित लोगों से भरा होना चाहिए.
So from that standpoint, everyone in the material world is a pervert because that's exactly what the Shastra is saying, is it not?
तो अगर देखा जाए, शास्त्र बताते हैं इस भौतिक जगत में जो भी कोई है वह एक घृणित व्यक्ति है.
So we see how Shastra is using the perfect word, and we, you know, we say it all the time, but what we're trying to do now, get the deep meaning of the word pervert, means that every fallen jiva is a pervert. That's the meaning.
जो शास्त्रों में इसकी चर्चा की गई है, विकृत शब्द, ये जो भौतिक जगत है एक विकृत छाया है, जिसमें जो विकृत शब्द है इसका बहुत ही गहरा मतलब है. इसमें जितने भी जीव हैं जो पतित हैं उनके लिए संबोधित किया जाता है.
सो परवर्टेड रिफ्लेक्शन मीन्स इट्स नॉट द रियल थिंग.
विकृत छाया का अर्थ है कि ये वास्तविकता नहीं है.
कोका कोला हैज दिस स्लोगन, द रियल थिंग. यू सीन द स्लोगन, कोका कोला स्लोगन, the real thing, quote unquote. That's their slogan.
जो कोका कोला कंपनी है, जो उनका स्लोगन है, उनका मुख्य जो लाइन है वह ये है कि ये वास्तविक चीज है.
Do you believe that personally?
क्या आप इस पर विश्वास करते हैं?
Well, I said the slogan, the word slogan.
जो कोका कोला कंपनी है वो कंपनी बताती है कि ये वास्तविक चीज है,
उसका नारा है. like a verbal icon, a slogan is like a verbal icon, okay?
जो कोल्ड ड्रिंक की कंपनी है कोका कोला, Coca-Cola uska naam us
company ka nara hai. On the hoarding boards they write Coca-Cola advertisement, they say quote the real thing unquote.
Jo bade bade billboard lage hote hain bar advertisement usme Coca-Cola company ki ad aati hai aur uska unka nara likha hota hai ki ye ek vastavik cheez hai. To kya aap is pe vishwas karte hain?
They've been marketing under that slogan for decades.
Main is nare ko kai dashkon se iska prachar kar rahe hain. Why is saying no, he does not believe.
Does not believe. It's not the real thing. This is another fraud, you know.
Ye koi vastavik cheez nahi hai. Ye ek pura dhoka hai.
The real thing is Krishna and his devotees of Vrajadham. That's the real thing.
Bhagwan Krishna aur unke bhakt Vraj Dham mein ye vastavikta hai.
Haribol! Go Haribol!
Go
Haribol!
Go Haribol!
Did that go Haribol? So this is next time you hear this phrase, because everyone says, isn't it, frequently in class, we repeat the Shastra, we repeat the Acharyas. Every Shastra and Acharyas are all saying perverted reflection, and we hear it regularly in class, isn't it? Yes, no?
Agli baar jab ye shabd use ho, vikrit chhaya, kyunki aise classes mein, kakshaon mein, jisme Shastra aur Acharya ke baare mein, unke vaani ko dohraya jata hai.
Comes out regularly, isn't it? It's very basic, very basic.
So, jo ye shabd hai, kai anek baar iska istemal kiya jata hai.
It goes along with we're not this body. It's that basic. The concept of this material world is a perverted reflection of the spiritual world. That's as basic to our understanding of the absolute truth as we're not this body. Because it's two, like left foot and right foot. They go together, you see. Is that not?
जो सिद्धांत है वह ये है कि जो भौतिक जगत है वह आध्यात्मिक जगत की विपरीत छाया है.
So next time you hear the Prabhu speaking of perverted reflection, perhaps you'll hear the word perverted a little differently, because I'm explaining the deep meaning of the word perverted is sick. Sick.
भौतिक जगत है वह आध्यात्मिक जगत की विकृत छाया है. जब अगली बार आप इस शब्द को सुने विकृत शब्द, तो हम यहाँ पे विकृत शब्द की गहराई से चर्चा कर रहे हैं. विकृत शब्द का जो गहराई से जिसका अर्थ है वह है घृणित.
So these Krishna consciousness ashrams all over the world, they are hospitals.
जो कृष्ण भावनामृत केंद्र हैं, वह जो पूरे विश्व में ये अस्पताल हैं.
For sick souls,
जो बीमार आत्माएं हैं उनके लिए.
But at least devotees are a little honest. I mean, chota honest, you know, at least.
परंतु भक्त देखें वो कुछ मात्रा में ईमानदार होते हैं.
Because at least devotees recognize, yes, I'm in a sick condition.
कि जो भक्त हैं वे इस बात से सहमत होते हैं कि मैं वास्तव में बीमार हूँ.
I'm a severe case because I'm in the hospital. I'm a severe case.
और ये बीमारी बहुत अधिक है. इसलिए मैं अस्पताल में हूँ.
So I have to take the medicine.
इसलिए मुझे दवाई लेनी चाहिए.
What is that medicine?
और ये दवाई क्या है?
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे.
As well as Shravanam Kirtanam Krishna, not just Prajalpa, but Shravanam Kirtanam Krishna.
Shravanam Kirtanam Krishna ke baare mein, Prajalpa nahi.
Or Shravanam Kirtanam Radhe Radhe.
Shravanam Kirtanam Radhe Radhe.
Right, Sukram Varna Prabhu. Talk.
Shuklavan Prabhu, kya ye main sahi keh raha hoon?
Radhe Radhe.
Radhe Radhe.
Radhe Katha. Hari Katha.
Radhe
Katha. But at least, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Because Hare is Radha Rani also.
Jo Hare shabd hai, isme ye Radha Rani hai.
Everyone chanting Hare Krishna, they are getting direct association with Srimati Radha Rani.
Jo bhi Hare Krishna shabd ka uchar kar rahe hain, unhe sakshat pura sang mil raha hai Srimati Radha Rani ka.
As good as darshan with Radhika Raman.
और ये जो राधिका रमन जी का जो दर्शन है इसके समान है.
एवरी टाइम एनीवन सेज हरे कृष्णा,
कभी भी कोई कहता है हरे कृष्णा,
राधे गोविंद राधे गोविंद,
राधे गोविंद
राधे गोविंद राधे गोविंद
राधे गोविंद.
It's like last night this Prabhu brought that unbelievably beautiful black Krishna deity he brought here to the temple.
पिछली रात प्रभु जी बहुत ही सुंदर विग्रह जो कृष्ण है श्याम वर्ण के उनका विग्रह वो मंदिर में लाए.
That deity was also the presiding deity at the Dwarka festival the other day.
जो ये विग्रह थे ये जो द्वारका फेस्टिवल में द्वारका में जो हरिनाम सप्ताह का आयोजन किया गया था वहाँ पे भी ये विग्रह उपस्थित थे.
How many of you saw that deity?
आप में से कितने भक्तों ने उस विग्रह के दर्शन किए थे द्वारका में या पिछले रात?
You missed the Dwarka festival. Yeah, yeah. But last night this deity was here in the temple room. He brought the deity.
पिछली रात्रि को वह विग्रह मंदिर में उपस्थित थे. वह भक्त उस विग्रह को मंदिर लाए.
It's gorgeous. It's the most beautiful small Krishna deity I've ever seen. It's about one third of a meter tall. So beautiful and nicely taken care of. Nice clothing, fresh flower garlands, mukuts. Very nicely taken care of.
उनकी जो ऊंचाई थी एक मीटर का एक तिहाई भाग और ये जो विग्रह थे बहुत ही सुंदर थे. जो इनका जो श्रृंगार किया हुआ था और जो भक्त उनकी सेवा कर रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे थे.
The result is the deity is very happy.
इसका परिणाम ये है कि जो विग्रह है बहुत प्रसन्न है.
If the deity is happy, then your life is perfect.
और अगर विग्रह प्रसन्न है तो आपका जो जीवन है वह सिद्ध है.
Because this is the mood of the gopis.
क्योंकि ये जो गोपियों का भाव है.
Just to do something nice for Krishna. They live for that. They breathe for that. They yearn for it.
कि भगवान कृष्ण के लिए कुछ अच्छा कर सकें उनकी प्रत्येक सांस इसके लिए है. उनका पूरा जीवन सिर्फ इसके लिए है.
Just to do something wonderful for Krishna, for his pleasure.
कि कृष्ण के लिए कुछ अद्भुत कर सकें उनकी प्रसन्नता के लिए.
That's all they live for, nothing else.
उनका पूरा जीवन वह जीती सिर्फ इसके लिए है.
Oh, that is our movement.
और यही हमारा आंदोलन है.
This is given by Chaitanya Mahaprabhu.
ये चैतन्य महाप्रभु की प्रति.
Because he is Radharani himself, so he is giving the most perfect conception of Bhakti Marg in the mood of Radharani and the Gopis. Mahaprabhu is giving because he is Radharani. So therefore, he is giving service to Krishna in the mood of Radharani. That's why we take like that. He is Acharya, and we are taking in his line, and our saints, they are simply following Mahaprabhu. That's all. Bona fide guru.
जो चैतन्य महाप्रभु हैं वे राधा रानी के भाव में ही हैं. वो हमें सारी सेवाएं प्रदान करते हैं और जितने भी आचार्य हैं वे चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का पालन करते हैं.
This creates sweetness or rasa.
और इससे जो रस की मधुरता है वह उत्पन्न होती है.
Bhakti rasa.
भक्ति रस.
Just like Rupa Goswami's book is called Bhakti Rasam Amrita Sindhu.
जिस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी पाद की जो पुस्तक है वह भक्ति रसामृत सिंधु.
But Bhakti Rasa Amrita, of course Amrita means nectar.
भक्ति रसामृता अमृत का अर्थ है अमृत.
Therefore the book is, his book is translated as nectar of devotion. Amrita means nectar. Nectar of devotion. Bhakti Amrita Sindhu.
भक्ति अमृता जो इसका जो अनुवाद है इंग्लिश में नेक्टर ऑफ डिवोशन.
सो दिस भक्ति रस दैट इज नॉट जस्ट फॉर गोपीज एंड परमहंस. दिस इज द पॉइंट. हूएवर इज चैंटिंग हरे कृष्ण ऑलरेडी दे वेंटेड इनटू भक्ति रस. दिस पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड.
ये भक्ति रस है सिर्फ गोपी और परमहंसों के लिए नहीं है. ये यहाँ पे समझने वाली बात है. कोई भी जो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण कर रहा है वह भक्ति रस को प्राप्त कर सकता है.
But the neophyte devotee cannot chant a prema naam. They cannot. They are not fit. Their heart is not clean enough.
परंतु जो कनिष्ठ भक्त है वह हरि नाम बिना अपराधों के जप कर नहीं सकता प्रेम के साथ.
still it is bhakti rasa, even though it is imperfect, it is still bhakti rasa.
परंतु फिर भी ये भक्ति रस है, हालांकि अभी पूर्ण नहीं है, परंतु फिर भी ये भक्ति रस है.
Because the sambandha is there.
क्योंकि इसमें संबंध है.
Sambandha means relationship.
संबंध का अर्थ है संबंध.
So Krishna is dancing on the tongue even of the neophyte devotee.
गणेश भक्त की जीवा पे भी भगवान कृष्ण नृत्य करते हैं.
That is sambandha.
ये संबंध है.
Yes, that he's dancing. Even the tongue of the neophyte is not pure, but still Krishna is dancing there.
हालांकि कनिष्ठ भक्त की जो जप है वह शुद्ध नहीं होता, परंतु फिर भी भगवान कृष्ण उसकी जीवा पे नृत्य करते हैं.
Only the neophyte cannot get prem because their heart is not clean enough.
जो कनिष्ठ भक्त है उसको भी प्रेम प्राप्त नहीं होता क्योंकि उसका हृदय स्वच्छ नहीं है.
So we are all within this dream world of the perverted reflection.
हम सब एक स्वप्न की दुनिया में जी रहे हैं.
एंड विच सो कॉल्ड इमोरल एक्टिविटीज आर सिनफुल इन दिस डार्क वर्ल्ड, येट कृष्णा सो कॉल्ड इमोरल एक्टिविटीज आर ग्लोरियस.
जिसके से जितने अनैतिक कार्य हैं इस पूरे अंधकारमय जगत में वे सारे पापमय हैं.
एंड दे आर नॉट केप्ट सीक्रेट, प्रभुपाद मेक्स दिस पॉइंट.
और प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं उनको रहस्य में ही नहीं रखा जाता.
Krishna himself and the acharyas spread the knowledge of Krishna's mischievous activities throughout the entire creation.
भगवान कृष्ण और उनके जो भक्त हैं आचार्य हैं उन्होंने भगवान के जो ऐसे हालांकि दिखने वाले अनैतिक कार्य इनकी जो इनका प्रचार किया है पूरे ब्रह्मांड में.
So we'll continue with the purport.
तो हम तात्पर्य से पढ़ेंगे.
Not understanding the transcendental behavior of the Supreme Personality of Godhead, these rascals slur his characters.
ये धूर्त भगवान के दिव्य व्यवहार को ना जानने के कारण उनके चरित्र पर लांछन लगाते हैं.
Slur, the English word slur means defame, like throwing mud or throwing stool.
लांछन लांछन लगाने का अर्थ है कि इसमें मिट्टी फेंकना, उसका अपमान करना.
An attempt to spoil.
लांछन लगाना.
So that is the meaning of the word slur.
लांछन लगाने का यह अर्थ.
What's up here? Your mic is fading. Who's the sound man?
लांछन का अर्थ है लांछन लगाना.
So they attempt. These rascals slur his character. So we have to understand this word slur means defame in a very dirty way.
लांछन शब्द का अर्थ है कि बहुत किसी को बहुत बुरी तरीके से अपमानित करना.
Everybody understand? Slur.
हर किसी को समझ आ गया इस शब्द का अर्थ.
Therefore, we continue. They immediately fall into the category of miscreants, rascals, lowest among men, demons, and those whose knowledge is taken away by the illusory energy.
जो निपट मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम हैं, जिनके ज्ञान माया द्वार हरे जा चुके हैं, तथा जो असुरों को नास्तिक प्रकृति में भाग लेते हैं, वे कुकर्मी मेरी शरण में नहीं आते.
Having said this, Srila Prabhupada quotes the most perfect verse from Bhagavad Gita to illustrate this point in Krishna's own words.
And bataya hai ki jo Srila Prabhupada ne yahan pe jis shlok ka udit kiya hai.
Chapter 7, text number 15.
Bhagavad Gita se adhyay 7 shlok sankhya 15.
I think many of you know this shloka.
Aap mein se kai bhakton ko is shloka yaad hoga.
Everyone say please.
Har koi kripya sath mein kahe.
नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नरानां मयाप्यज्ञानाः असुरं भवं अस्मिताम्. Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest. So Naradama means lowest amongst mankind.
जो निपट मूर्ख है मनुष्यों में अधम है.
Whose knowledge is stolen by illusion.
जिनके ज्ञान माया द्वारा हरे जा चुके हैं.
सो माया प्रीति ज्ञान मीन्स नॉलेज, यू नो दैट.
माया प्रीति ज्ञान, इसमें जो ज्ञान का शब्द है वह ज्ञान.
सो माया प्रीति ज्ञान मीन हुज नॉलेज इज स्टोलन बाय इल्यूजन.
और यहाँ श्लोक में शब्द आता है माया प्रीति ज्ञान, जिसका अर्थ है जिसका ज्ञान माया द्वारा हरा जा चुका है.
Asuram bhav ashvita. So, who partake of the atheistic nature of demons.
असुरों की नास्तिक प्रकृति में भाग लेने वाले.
They do not surrender unto me.
वे मेरी शरण में नहीं आते.
Mayaya prajigan especially applies. It applies to everyone in the material world, of course.
माया प्रित ज्ञान जो ये शब्द है ये संबोधित करता है हर जीव को जो इस भौतिक जगत में है.
But it especially applies to the so-called intellectual class.
विशेषकर ऐसे लोगों को जो बुद्धिमता की श्रेणी में आते हैं.
The university professors and the so-called scientists.
बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक हैं और वैज्ञानिक जो हैं.
They are the worst amongst Mayaya Prajigan, the worst.
जो मायाप्रित ज्ञान की श्रेणी में है वे सबसे नराधम है.
Why are they the worst?
ऐसा क्यों?
Everyone's mind and intelligence is stolen by illusion. Every fallen soul, their mind and intelligence are stolen by illusion.
हालांकि हर जीव का जो मन और जो बुद्धि है उसको चुरा लिया गया है माया के द्वारा.
So therefore, the Mayaya Pritya Gyan, that shloka applies to every fallen soul in this material world.
इसलिए माया प्रित ज्ञान जो ये शब्द है ये हर जीवात्मा को संबोधित करता है भौतिक जगत में जितनी पतित आत्माएं हैं.
Then why are the scientists and the so-called academic community the worst amongst Mayaya Prajigan? Why are they the worst?
तो फिर वैज्ञानिक और शिक्षक इसमें सबसे गिरे हुई श्रेणी में क्यों आते हैं?
वैकुंठ. They're supposed to lead the society.
क्योंकि वे पूरे समाज का नेतृत्व करते हैं.
Good. What else? That is certainly true. What else? They're supposed to lead society. What else makes them the worst? Yes. Material knowledge. Huh? Material knowledge makes one an ass.
तो ये उत्तर दे रहे हैं कि जो भौतिक विद्या है ये एक व्यक्ति को गधा बनाती है ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं.
What else?
इसके अलावा.
Yes, प्रभु.
Bodily concept of life,
of course, because that's avidya.
देहात्मक बुद्धि निश्चित रूप से यही अविद्या है.
Yes, प्रभु. Yes, they deny existence of God. Very good.
वह भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं.
What else?
के अलावा क्या?
Yes. Yes.
और प्रभु जी ने बताया कि वह जो अज्ञानता है उसको ज्ञान के वेश में इसका प्रचार करते हैं.
That was what I. All these other answers are correct, but what I was really driving for is that answer.
बाकी सब उत्तर ठीक थे, परंतु ये मुख्य चीज है.
They claim to be. You know the word purveyors, purveyors. They present like well, purveyors of sweets. Anyways, it's an archaic English, British word. They claim to be presenters or salespersons of truth and knowledge.
वे अपने आप को इस प्रकार से बताते हैं कि वे बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं और ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं.
We will go to the university for what?
हम स्कूल विश्वविद्यालय में किस लिए जाते हैं?
For quote knowledge, quote unquote.
तथा कथित ज्ञान के लिए.
The Prabhupada says, "Where is the university that is teaching about the soul?" Prabhupada really hammers on that point.
श्रीला प्रभुपाद प्रश्न पूछते हैं. ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जो आत्मा का ज्ञान दे रहा है?
Since the knowledge of the soul is not taught in universities nowadays. The devotees are in the universities teaching. Vijay!
क्योंकि विश्वविद्यालय में आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जाता इसलिए अभी भक्त ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं.
They make a whopping 40 devotees a year in Chapari, isn't it? Out of universities and I believe the same number for Pune. More? More than 40 a year?
महाराज बता रहे हैं जैसे चौपाटी मंदिर है उसमें हर वर्ष 40 से ज्यादा भक्त मंदिर ज्वाइन करते हैं जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से पास आउट है. और जो पुणे मंदिर है उसमें हर वर्ष 50 ऐसे भक्त उसका ज्वाइन करते हैं जो विश्वविद्यालयों से पास आउट है.
That's close to 90 devotees per year that they're making. Who surrender to the ashram, right? Unbelievable.
दोनों मंदिर को अगर मिला लिया जाए तो 90 ऐसे भक्त जो विश्वविद्यालय से पास आउट है वह पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं.
In Pune, they built a new building just in the nick of time, otherwise there'd be no place to put them all.
जैसे पुणे में भी नया मंदिर बना है जिसका उद्घाटन नए साल पे हो.
The grand opening of Pune temple is Nityananda Chalodasi, 23rd of February.
बहुत ही बड़े हर्ष के साथ इसका उद्घाटन होगा नित्यानंद त्रयोदशी के महोत्सव.
So I'm sure he'll be there. So therefore, what the materialists, atheists, Maya Yaprijigan, what they're not doing, the devotees are doing.
इसलिए जो भौतिकवाद और जो नास्तिक लोग हैं वह कार्य नहीं कर रहे जो भक्त कार्य कर रहे हैं.
We learn from the 7th canto Srimad Bhagavatam, Prahlad Maharaj.
सातवें स्कंद में जब प्रहलाद महाराज की कथा आती है.
स्कंद और अमर्ग.
स्कंद और अमर. स्कंद और अमर.
स्कंद और अमर्ग, यू नो, यस. हु आर स्कंद और अमर्ग? द टीचर्स, यस.
स्कंद और अमर कौन है? वह प्रहलाद महाराज के जो
the agents of Hiranyakashipu.
हिरण्यकशिपु के जो
supposed to deprogram Prahlad.
हिरण्यकशिपु ने इनको
नियुक्त
किया था प्रहलाद महाराज का.
They were supposed to make Prahlad into a first class atheist.
प्रहलाद महाराज को नंबर एक श्रेणी का नास्तिक बनाना चाहते थे.
It didn't work.
परंतु इसने कार्य नहीं किया.
Instead, he converted all his classmates to chanting Hare Krishna.
परंतु उल्टा हुआ. प्रहलाद महाराज ने अपने जितने भी संबंधित लोग थे.
So that was in Treta Yuga. That was in Treta Yuga. So in Treta Yuga they were chanting Hare Krishna. So Prahlad Maharaj giving.
तो एक कथा है त्रेता युग में आती है. त्रेता युग में भी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे.
So then, when you know the story, when Radhikasabu called for his dear son.
आप ये सब कथा से ज्ञात होंगे जब हिरण्यकश्यपु अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज को बुलाते हैं.
We see that even demons are fond of their children, you know.
हम देखते हैं असुर गति के लोग भी हैं अपने पुत्रों के प्रति बहुत आसक्त होते हैं.
So he affectionately calls Prahlad, sits him on his lap like a good father.
और वह प्रहलाद महाराज को बहुत ही प्रेम से बुलाते हैं और अपनी गोद में बिठाते हैं.
Pat him on the head.
और उनके सर को सराहते हैं.
So my dear son, my dear sweet son, my beloved son, what have you learned in school?
मेरे प्रिय पुत्र, तुमने अभी तक विद्यालय में क्या सीखा है?
श्रवणम कीर्तनम स्मरणम बाधनम परसेवनम दास्यरे. What? Who has taught you this?
क्या किसने तुम्हें ये सब सिखाया है?
He was very angry.
और वे बहुत ही क्रोधित हुए.
This happened two or three times. He sent him back to reform school, tried to deprogram him, and he held Skanda and Amarga responsible.
दो तीन बार उन्होंने प्रयास किया. उनको विद्यालय भेजते थे. चरण और अमर को नियुक्त किया था कि इनको नास्तिक बनाइए.
Of course, they were very frightened because they didn't want Hiranyakashipu to kill them.
और जो उनके शिक्षक थे चरण और अमर बहुत डरे हुए थे क्योंकि वे ये नहीं चाहते थे हिरण्यकश्यपु उनका वध कर दे.
Sharp sword on a whim he could kill anybody. He's the emperor.
कि वे राजा थे कि एक आदेश से एक तलवार से कभी भी उनको मारा जा सकता था.
He interrogates them. Interrogate means he, like police, you know.
जिस प्रकार से पुलिस पूछती है पूछताछ करती है उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु इन शिक्षकों से पूछताछ करते थे.
Who has taught my son like this? You have taught my son like this? Vishnu, Vishnu, Vishnu. Vishnu is our enemy. You have taught my son like this?
क्या तुमने मेरे बेटे को ऐसा सिखाया है?
No sir, no no sir. That's not me, not me. No no sir.
किसने मेरे बेटे को ऐसा सिखाया है? विष्णु 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 हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है. और वे डर के बहुत ही डर के उत्तर देते थे कि नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं किया.
Then they say, this is the punchline. The punchline is called.
और वे इस प्रकार से कहते थे एक बहुत ही.
Some Vaishnav has infiltrated our school.
कि कोई वैष्णव हमारे विद्यालय में आ गया है.
Hare Vaa! This is a very ancient pastime.
Hare Vaa!
बहुत ही पुरानी लीला है.
So we see that the modern Vaishnav preachers on behalf of Srila Prabhupada infiltrating the schools very nicely.
और हम आज देखते हैं कि जो वैष्णव है आज के विद्यालयों में घुसपैठ करते हैं.
For the record, in many cases the not always, but in many cases the school administration appreciates devotees because they see that it, like it happened in Allahabad, isn't it? In Allahabad, wasn't it that they were opposed to devotees and they softened up because of suicide problem?
अधिकतर केसों में देखते हैं जो विद्यालयों की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो वहाँ के अधिकारी लोग होते हैं वे बहुत ही प्रशंसा करते हैं इनकी.
Was that in Allahabad? Oh, Bitspalani? Oh, they had suicide and problem, Bitspalani? In Bitspalani, what was the problem there? Oh, they were opposed. They sponsor courses? Bitspalani.
कि प्रजी बता रहे हैं कि Bitspalani जो विश्वविद्यालय है पहले बहुत ही इसका अगेंस्ट था जो प्रोग्राम होते थे परंतु अब वह इतना प्रशंसा करता है कि सारे कोर्सेज वही स्पॉन्सर करते हैं.
यस वेलकम टू द फ्यूचर.
आपका स्वागत है भविष्य में.
हरे बो हरे बो निताय गो हरे बो
हाय गा.
वेयर इन ओरिसा. या Now they're teaching courses in the school?
Yes.
What's the name of the school?
NIT?
Rautila.
Rautila?
Yes, I know. What are they?
K-U-L-A.
K-E-L-A. K-E-L-A. Anyways, it's a mainstream prestigious university. Very prestigious university.
A National Institute of Technology, जो NIT राउरकेला है उड़ीसा में है वहाँ के जो अधिकारी हैं वह भी कृष्ण भावनामृत के ऊपर जो कोर्सेज हैं उनको स्पॉन्सर करते हैं.
40 students attending 16 rounds daily. And then where, how far from Puri this place is?
वहाँ पे 40 जो स्टूडेंट्स हैं वे प्रतिदिन 16 माला का जप करते हैं.
Who is guiding these 40 students? From Pune.
और पुणे मंदिर इनका मार्गदर्शन करते हैं.
So this Krishna consciousness movement is like an octopus. We are spreading everywhere.
कृष्ण भावनामृत है एक ऑक्टोपस की तरह है हमारे.
No, I take the risk of saying this on the internet because it's what you call it's with the permission of authorities. It's not, you know, sneaky, secret. Just like Prabhupada says, it's not a secret that Krishna's a thief. Not a secret that Krishna's a thief. It's not a secret that the Hare Krishna's are on the campus. Arriba!
हालांकि मैं इंटरनेट पे ये लेक्चर ब्रॉडकास्ट हो रहा है फिर भी कह रहा हूँ क्योंकि अधिकारी बहुत फेवरेबल है.
सो यूर यंग पीपल एंड दैट मीन्स This is going to increase more and more.
कि ये बहुत अधिक मात्रा में फैलेगा क्योंकि ये युवा पीढ़ी कृष्ण भावनामृत को अपना रही है.
I'm going to work together with Radhisham Prabhu. And he's got some men down there. I told him we have to have a school book for grammar school kids.
महाराज बता रहे हैं वे वहां के पुणे मंदिर के अधिकारियों के साथ उनके साथ सेवा करेंगे और उन्होंने महाराज ने सुझाव दिया है कि एक छोटी पुस्तक होनी चाहिए स्कूल में जाने वाले लोग.
Did I tell you about that? I told you about that? Yes, Jodhakama Sadaputra's books on evolution that, what do you call, yes, that disprove Darwinism.
And Maharaj ke ane sujhav bhi hai, jo evolution ki ek theory hai, ki jo manushya bandar sa hai, unke upar unke vipreet pustake hai, is siddhant ka khandan karte hai.
So presuming that Jodhakama and the BBT give their blessings, then I will work together with Radhisham and his team on producing this digest for secondary school children.
और अगर BBT के द्वारा इसकी सहमति हो जाती है तो महाराज बता रहे हैं कि वहां के अधिकारियों के साथ वे सेवा करेंगे इस सिद्धांतों के ऊपर.
Anyways, this business of infiltrating schools we see going back to Treta Yuga, a very ancient pastime.
यहाँ पे हम देखते हैं ये बहुत ही पुरानी कथा है त्रेता युग में इसका.
But now instead of one Hiranyakashipu, there are millions of Hiranyakashipus, especially in the academic community.
उस समय एक हिरण्यकश्यपु थे और आज कई लाखों हिरण्यकश्यपु हैं.
Of course they're nothing, you know, they're like germs, you know, but germs can be counteracted by good medicine.
वे कुछ भी नहीं है, वे एक अणु के समान है, कीड़े के समान है.
Good medicine means Gohariba Nita Gohariba
Gohariba
Gohariba Nita Gohariba Gohariba Nita Gohariba Gohariba Nita Gohariba. This is good medicine.
ये एक अच्छी दवाई है जो इन सभी कीड़े के समान हिरण्यकश्यपु को हटा देगी.
And then you young people, in your lifetime you're going to see how the disease retreats more and more, like somebody takes some therapy for cancer. Cancer is very serious.
आप सब युवा पीढ़ी के यहाँ पे भक्त हैं, आप देखेंगे अपने जीवन में किस प्रकार से जो बीमारी फैली हुई है इसका उपचार होगा.
Sometimes the cancer recedes, you know recedes, goes down. Sometimes it goes down or is eliminated by first class medical treatment.
कई बार हम देखते हैं अगर कैंसर का बहुत अच्छा इलाज किया जाए तो कैंसर कम हो जाता है.
So in your lifetime you're going to see how more and more this increases the presence of Krishna consciousness in the standard educational system.
आप अपने आयु में देखेंगे किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत ज्यादा से ज्यादा अपनाई जाती है और स्कूलों वगैरह में भी इसमें पढ़ाया जाता है.
Rishi Narada tells me that Darwinism is losing favor in the academic community.
और भक्त हैं ऋषि नारद को, उन्होंने महाराज को बताया कि जो डार्विन की थ्योरी है, जो उसका सिद्धांत है, आप इसका खंडन
only because of Sariputta's work and the devotees. Sariputta and Prabhupada's books. Sariputta and I mean Jodhakama especially. Jodhakama, Sariputta, but Jodhakama has become famous worldwide now. Famous now.
His great Sadaput Prabhu or his great Drudkarma Prabhu, उन्होंने इस सिद्धांत का बहुत गहराई से खंडन किया है कि जो मनुष्य है जान बंदरों से आया है और अभी वह पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध हैं.
The academic community, the highest levels, Nobel laureates, you know, Nobel Prize means Nobel. He used to be a dynamite manufacturer, then he wanted to reduce his karma. So he started giving out billions of dollars in prizes to accomplishment for world peace, Nobel Peace Prize, this prize, that prize, you know, Nobel, very famous around the world.
जो नोबेल प्राइज है इसमें जो नोबेल है ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही पुरस्कृत करते थे कि जो पूरे विश्व शांति के लिए कार्य करें.
So Jodhakama gets in behind closed doors at seminars
where many professors would sell all their belongings just to get behind those closed doors, and Dhrutakarma is invited. You see, that kind of prestigious circle, he's working there, and it is effective, highly effective.
इसलिए दुर्गकर्मा प्रभु जब अपने सेशन सेमिनार्स लेते थे बंद दरवाजों के पीछे तो कोई भी प्रोफेसर वगैरह अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाते थे सिर्फ कि वो किसी प्रकार से एंट्री मिल जाए उन सेमिनार्स पे.
He is so empowered by Srila Prabhupada that even those who don't agree with him want to hear from him. Just see, that's Prabhupada.
उन्हें श्रीला प्रभुपाद से इतनी शक्ति प्रदान है कि अगर कोई उनके मत से सहमत भी नहीं होता परंतु फिर भी वह उनके मुख से सुनना चाहता है.
हरिबाद निताय गो हरिबाद निताय गो हरिबाद. On the purport. It's a very long purport. So, going to mundane rascals cannot understand that whatever Krishna does, being absolute in nature, is all good.
संसारी धूर्त जन नहीं समझ सकते कि कृष्ण जो भी करते हैं वह सब अच्छा होता है.
This quality of the Lord is explained in Srimad Bhagavatam 10:33-29.
भगवान के इस गुण की व्याख्या श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद में हुई है.
One may consider certain acts of a supremely powerful person to be immoral by mundane calculations.
कोई किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति के कुछ कार्यों को संसारी गणनाओं द्वारा अनैतिक मान सकता है.
Supremely powerful person, of course, means Krishna.
अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ कृष्ण है.
But this is not actually the case.
किंतु बात ऐसी नहीं है.
For example, the sun absorbs water from the surface of the earth.
उदाहरण सूर्य पृथ्वी की सतह से जल सोखता है.
But it does not absorb water only from the sea.
किंतु वह केवल समुद्र का ही जल नहीं सोखता.
It also absorbs water from filthy sewers and ditches containing urine and other impure substances.
वह गंदे नालों का भी जल सोखता है जिसमें मूत्र तथा अन्य अशुद्धियां मिली रहती हैं.
The sun is not polluted by absorbing such water.
किंतु ऐसा जल सोखने से सूर्य अशुद्ध नहीं होता.
Of course, in India, there's no shortage of such polluted sewer rivers. We have one right next door, you know.
आजकल भारत जैसे देश में ऐसे अशुद्ध नाले बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं. जैसे मंदिर के सामने एक नाला है.
They won't do anything to clean it up because they're too busy putting money in their pockets.
और जो सरकार है वे इसको भी साफ नहीं करती क्योंकि उनके पास समय नहीं है. वे बहुत ही अपनी जेब भरने में व्यस्त हैं.
Even in the United States, this sewage disposal is becoming more and more of a problem. Even in the United States, where they're careful about hygiene in the United States. But now it's becoming more problem there that they can't process the amount of also contaminated drain water is counted as sewage in the U.S.
यहाँ तक कि अमेरिका में भी यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो गंदे नाले हैं एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं.
So, if a devotee approaches the Supreme Personality of Godhead for an immoral or immoral purpose, he nonetheless becomes purified.
यदि कोई भक्त किसी अनैतिक या अनुचित कार्य के लिए भगवान के पास जाता है तब भी वह शुद्ध बन जाता है.
ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड हु कैन थिंक ऑफ अ क्लासिक एग्जाम्पल.
आप में से कौन इसका सबसे उचित उदाहरण देना चाहेगा?
यस ध्रुव महाराज. ऑलराइट फाइन. हरिबाद. Yes, because Dhruva Maharaj was wanting only material things.
जैसे कि ध्रुव महाराज देखते हैं उनका जो आंतरिक जो उनकी इच्छा थी वह कुछ और थी.
He declared, "I want a kingdom greater than my father."
उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी थी कि मैं अपने पिता से बड़ा साम्राज्य पाना चाहता हूँ.
He was very, very materially ambitious.
और वह बहुत ही भौतिक इच्छा बहुत ही प्रगाढ़ भौतिक इच्छा से.
I want a kingdom even greater than that of Lord Brahma.
कि मैं एक ऐसा साम्राज्य चाहता हूँ जो भगवान ब्रह्मा से भी बढ़कर हो.
What is this? This is madness.
ये क्या है, ये पागलपन है.
But the material disease is madness.
परंतु ये जो भौतिक बीमारी है ये पागलपन के समान
है. Therefore we're in the insane asylum so that we can get straightened out.
इसलिए हम पागलखाने में.
That is a good example, Dhruva Maharaj. And of course, later he got, after darshan with Lord Vishnu, he got purified.
Dhruva Maharaj is a good example. हालांकि जब उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए तो वह पूरे शुद्ध बन गए.
Example Prabhupada is using here of the sun purifying something dirty. Krishna Surya, he purifies all this dirty rubbish.
इस प्रकार से जो सूर्य है सभी गंदी चीजों को सोख लेता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी सारी गंदी इच्छाओं को.
What's another classic example?
इसके अलावा कौन सा उदाहरण आता है?
Yes. Kubja.
Kubja.
Arriba.
Arriba.
That is exactly what I had in mind. Of course, Dhruva Maharaj also fits. But Kubja fits even more.
मेरे मन में महाराज बताने यही उदाहरण था. कुब्जा का उदाहरण बहुत उपयुक्त उदाहरण है यहाँ पे.
Because she was lusty.
क्योंकि वह कामुक थी.
Dhruva Maharaj was not, well, you could say Dhruva Maharaj was lusty in one sense. He was trying to, you know, gain such immense power. You could call that lust if you want. But the sexual lust, that is, you could say, worse.
Dhruva Maharaj ko agar dekha jaye keh sakte hain agar kamuk hai kyunki vah bahut hi shaktishali samrajya chahte the. Parantu yahan jo kubja hai vah bhagwan se aakarshit thi.
So going back to the purport, the sun is not polluted by absorbing such contaminated water.
Agar hum wapas tatparya mein padhe.
Rather, the sun makes the filthy place pure.
कि जो सूर्य है वह गंदी चीजों से भी को भी शुद्ध कर देता है.
If a devotee approaches the Supreme Personality of Godhead for an immoral or improper purpose,
यदि कोई भक्त भगवान के पास जाता है किसी नैतिक या अनैतिक इच्छा से,
he nonetheless becomes purified.
परंतु वह फिर भी शुद्ध बन जाता है.
The Lord does not become infected.
इससे भगवान दूषित नहीं होते.
There are amazing examples of this in the history of our society.
हमारे कृष्ण भावनामृत की जो हिस्ट्री है इसमें बहुत ही अद्भुत ऐसे उदाहरण हैं.
In the former Soviet Union, under the strict communist rule, very strict demoniac communist rule, that was persecuting devotees.
सोवियत यूनियन में जब कम्युनिज्म था तो वहां पे की जो सरकार है वहां के भक्तों को बहुत सजा देती थी, कड़ी सजा देती थी.
So if the government suspected Hare Krishna activity, then they would send the KGB, the secret police, to infiltrate and find out what they were doing so they could get ready to arrest them and so forth. So they would send spies.
अगर सरकार को इसकी भनक भी लग जाती थी कि यहाँ कोई व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है तो वह तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश देती थी कि जाओ पता लगाओ और उनको गिरफ्तार करो.
There is one classic case, true story.
और एक ये सच्ची घटना है.
Of a KGB man that was sent to spy on devotees.
कि वहां पे जो पुलिस है उनको भेजा गया नजर रखने के लिए एक भक्त के ऊपर.
Hardcore secret police, very heavy. I mean in those days they were much heavier than CID, much heavier than that.
और जो यहाँ पे सीआईडी है उससे भी बढ़कर वहां पे उनकी पुलिस फोर्स होती है, बहुत ही सीक्रेट फोर्सेस होती हैं.
So his job was to spy on the Hare Krishnas.
उनका जो कार्य था कि जो हरे कृष्णा वहां भक्त थे उन पे नजर रखना.
So part of spying on Hare Krishnas is to what kind of books are they reading? What are they reading? They're reading something. What are they reading? Is it subversive?
तो उनकी जो नजर रखते थे मुख्यतः इस चीज पे कौन सा क्या पढ़ रहे हैं, वो कुछ तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं.
Is it anti-government? Are they trying to overthrow the government? What are these people doing?
क्या ये सरकार के विरुद्ध है, क्या वे ये चाहते हैं कि सरकार गिर जाए.
So he read Bhagavad Gita.
तो उन्होंने भगवत गीता पढ़ी जो पुलिस है.
But he became completely thrilled by reading Bhagavad Gita.
परंतु भगवत गीता पढ़ने के बाद एक बहुत ही क्रांति आई.
It became a problem for the KGB department.
और वह वहां की पुलिस के लिए ही वह व्यक्ति समस्या बन गया.
They had to send another spy to spy on their spy.
तो वहां के पुलिस डिपार्टमेंट को एक और व्यक्ति नियुक्त करना पड़ा कि वह जो इस व्यक्ति पर नजर रखने के लिए पहले.
The secret police administration started getting reports that the man was cracking.
तो वहां पे जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट्स मिली इसी विषय के संबंध में.
In the end, he had a total nervous breakdown.
और पूरा इसको उन्होंने मतलब डिटेक्ट किया.
But that total nervous breakdown was based on surrender to Krishna.
कि जो ये व्यक्ति थे उनको तो पर बहुत ही कड़ी नजरानी रखी जा रही थी, निगरानी रखी जा रही थी, परंतु फिर भी इस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को समर्पित किया.
He was found sitting with his head slumped over. You know this story? His head fallen down, bent over.
वह व्यक्ति बैठे हुए थे, उनका पूरा सिर बिल्कुल नीचे की ओर था.
Simply weeping.
और वह बहुत जोर जोर से रो रहे थे.
With the Bhagavad Gita in his hands.
और उनके हाथों में भगवत गीता थी.
We should come to that point. Just see. So-called demon, how because direct contact with Krishna, Krishna entered his heart and he became sold out to Krishna, and he was just weeping because he could then understand that everything going on around was demoniac. He could understand, and his heart was captured. Krishna captured his heart completely. He was totally purified. Previously, he was a demon.
जब भगवान कृष्ण के पूरे संबंध में आने से उनके पास भगवत गीता थी, भगवान कृष्ण उनके हृदय में गए और उनके जीवन में इतना बदलाव आया, वे इस बात को समझ सके कि आसपास को जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही आसुरिक हो रहा है.
Similarly, I'm told that in China, where Krishna consciousness is illegal.
महाराज बता रहे, मुझे बताया गया चाइना में जहाँ पे कृष्ण भावना मृत इलीगल है.
The communist government permits devotees to meet in small groups as long as they don't make any kind of public show.
और वहाँ की जो सरकार है सिर्फ इस चीज की अनुमति देती है कि जो भक्त हैं छोटे छोटे अपने ग्रुप्स पे कोई प्रोग्राम कर ले, परंतु इसका कोई आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए.
So wherever there are groups of devotees, they're also infiltrated by the secret police. Same thing.
और जहाँ कहीं भी ऐसे भक्त लोग मिलते हैं उन पर निगरानी रखी जाती है वहाँ की पुलिस के द्वारा.
So one Chinese devotee told me that now there are so many secret police have become devotees now in China. Yes, it's true.
एक चाइनीज भक्त ने बताया कि वहाँ पे जितने भी सीक्रेट पुलिस हैं उनमें से बहुत सारे लोग भक्त बन गए हैं.
हरि बाल जय गो हरि बाल गो हरि बाल. So Krishna is famous as a thief, you see, stealing the hearts even of secret police. Were meant to persecute devotees. Just see.
और कृष्ण एक चोर के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है. यहाँ पे देखा जा सकता है किस प्रकार से भगवान सभी के हृदय को चुरा रहे हैं, यहाँ तक के पुलिस के हृदय को भी.
Now let me complete on the purport.
तो अभी मुझे तात्पर्य पूरा करने दीजिए.
In the Srimad Bhagavatam 10:29-15, it is stated if one approaches the Supreme Lord even out of lust, anger or fear, kamang, krodam, bayam. He is purified.
श्रीमद भागवतम 10:19-15 श्लोक में बताया गया है यदि कोई काम क्रोध या भयावश भी भगवान के पास पहुंचता है.
The gopis being young girls approached Krishna because he was a beautiful young boy.
तो वह शुद्ध हो जाता है. गोपियां तरुणी थी, वे कृष्ण के पास पहुंची क्योंकि कृष्ण सुंदर तरुण थे.
From the external point of view, they approached the Lord out of lust.
बाह्य दृष्टि से वह काम वासना से भगवान के पास पहुंची.
And the Lord danced with them at midnight.
और भगवान ने उनके साथ अर्धरात्रि में नृत्य किया.
From the mundane point of view, these activities may appear immoral.
संसारिक दृष्टि से ये कार्य अनैतिक लग सकते हैं.
Because a married or unmarried young girl cannot leave home to mix with a young boy and dance with him.
क्योंकि कोई विवाहित या अविवाहित तरुणी अपना घर छोड़कर किसी तरुण बालक से मिलने और उसके साथ नाचने नहीं जा सकती.
Of course, Krishna is famous for this. Parakiya ras.
भगवान कृष्ण प्रसिद्ध हैं इस पारकीय रस में.
And nobody can understand parakiya rasics unless they surrender to a pure devotee.
इस पार के रस को कोई नहीं समझ सकता जब तक कोई शुद्ध भक्त को पूर्ण समर्पित ना कर दे.
Although this is immoral, mixing with a young boy mixing with either unmarried or married girls. Although this is immoral from the mundane viewpoint, the activities of the gopis are accepted as the highest form of worship because it was Lord Krishna whom they approached with lusty desires in the dead of night.
यद्यपि संसारिक दृष्टि से यह अनैतिक है किंतु गोपियां के इस कृत्य को पूजा का सर्वोच्च रूप माना जाता है क्योंकि वह अर्धरात्रि में कामवश जिसके पास पहुंची वह भगवान कृष्ण थे.
But these things cannot be understood by non-devotees.
किंतु इन बातों को अभक्तगण नहीं समझेंगे.
न माम दुष्कृति न मूढ़ा मया प्रीति ज्ञान असुरम भावमाश्रिता मयम. अगेन न माम दुष्कृति न मूढ़ा प्रभाजन्ते नरदामा मया प्रीति ज्ञान असुरम भावमाश्रिता न माम दुष्कृति न मूढ़ा प्रभाजन्ते नरदामा मया प्रीति ज्ञान असुरम भावमाश्रिता. So this is non-devotee. Nowadays, secularism is being promoted in the name of education and knowledge. The same. This shloka applies most perfectly for modern secularism that is polluting education system.
इस श्लोका खासकर आज के सेक्युलर लोगों के लिए है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर रहे हैं.
One must understand Krishna in tattva, truth.
मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को तत्वता समझे.
One should use his common sense and consider that if simply by chanting Krishna's holy name one is purified, how then can the person Krishna be immoral?
उसे अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि यदि केवल कृष्ण नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बना जा सकता है तो फिर साक्षात कृष्ण किस तरह अनैतिक हो सकते हैं.
Of course, the demoniac non-devotees, they can't accept that chanting Hare Krishna is purifying.
हालांकि जो अभक्त होते हैं वे इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हरे कृष्ण जप करने से शुद्ध बना जाता है.
In the early days when the devotees were just securing the property at Juhu, Bombay.
पुराने दिनों में जब भक्त इस बात का प्रयास कर रहे थे कि जुहू में उनको लैंड मिले.
In those days the neighbors would call the police and the police came. There were many confrontations between the police and the devotees. I mean, the devotees were not violent, but the police were coming and they were persecuting the devotees.
तो वहाँ पे जो पुलिस और भक्तों के बीच में बहुत अफरा-तफरी हुई.
The accusation was noise.
और हालांकि भक्त बिल्कुल अपनी जगह ठीक थे, परंतु जो पुलिस हैं, उनका जो मुख्य आरोप था कि वे शोर मचाते हैं.
So they were. Mr. Nair was a big property owner in the area.
तो वहाँ पे जो मिस्टर नायर थे वे बहुत ही बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे.
Once Prabhupada said, everyone will go back to Godhead. Everyone will go back to home, back to Godhead.
एक बार श्रीला प्रभुपाद ने बताया हर कोई भगवत धाम चला जाएगा.
Except for Mr. Nair.
मिस्टर नायर को छोड़ के.
He's the one who cheated the devotees and tried to reclaim the property.
ये मिस्टर नायर ही थे जिन्होंने भक्तों के साथ चीटिंग किया था. और
Big little legal fight, and so many times the police came out to Juhu temple. They wanted to cut down the temple. The first temple was only in the 1974-75. The first temple was just a shack, you know, shack, temporary building with steel poles and aluminum roof shed, you know, aluminum roof and steel poles. And the deities were inside a very simple, small house, not any larger than our altar, and that was the temple. That's it.
1974 या 75 में जहाँ एक बहुत ही छोटा सा मंदिर था जो स्टील के जो रूफ होती है और कुछ डंडों के सहारे खड़ा किया गया था और उसके अंदर विग्रह थे एक बहुत ही छोटे साइज के. तो पुलिस का हर बार कई बार ये प्रयास रहा कि किसी प्रकार से इस मंदिर को गिरा दिया जाए.
So because of the complaints, because Mr. Nair and his demoniac associates, they had too much political power in those days.
So जो ये मिस्टर नायर और उनके जितने सहयोगी गण थे उनका बहुत ही इन्फ्लुएंस था पॉलिटिकल पावर्स थी उनके पास.
So the police came onto the property and they were going to take torches and they were going to cut the temple down. It was metal, steel poles. They were going to cut down, they were going to destroy the temple.
Police वहाँ पे आई और उनके हाथों में औजार थे क्योंकि वो जो स्टील के लोहे के खंभे थे उनको वो काटना चाहते थे.
And which Radharasa Bihari were inside this shed.
और जो वहाँ श्री राधा रास बिहारी के जो विग्रह हैं वह इसके अंदर भी वहाँ पे रखे हुए.
My god sister, her name is Mayatihili. Mayatihili. Probably this instance probably in the Lilamrita. I don't know 100%.
महाराज बता रहे हैं उनकी गुरु बहन मायती लीली इन इस बात का जो इस लीला का वर्णन लीलामृत में भी आता है.
She chained herself.
उन्होंने चेन बांध लिया अपने आप को.
To the poles supporting the temple building.
जहां वहां पे पोल्स थे जो जिससे पूरा शेड रुका हुआ था उसके साथ चेन बांध लिया अपने.
She told the police, "You will have to kill me first. You're not going to cut down this building."
उन्होंने पुलिस को बताया कि तुम्हें इस बिल्डिंग को गिराने से पहले मुझे मारना पड़ेगा.
अरे वाह. She's an elderly woman now, you know. She lives in California, so elderly woman.
अभी वह कैलिफोर्निया में है और एक.
But you know, Rasi Bihari, Shishi Radharasa Bihari, they will never forget her. Never. Never, never, never.
और जो राधा रास बिहारी के विग्रह हैं वे उनको कभी नहीं भूलेंगे कभी
Even
नहीं कभी नहीं.
You know, she struggled. She's a single woman. She struggled in her material life, working outside jobs, all these things.
उन्होंने अपने भौतिक जीवन में भी बहुत संघर्ष किया. उन्हें बाहर जॉब करनी पड़ी. अकेली महिला थी.
When she leaves her body,
जब वह अपना शरीर छोड़ेंगी,
Shishi Radharasa Bihari will personally come to take her along with Srila Prabhupada.
श्री राधा रास बिहारी व्यक्तिगत रूप से आएंगे श्रीला प्रभुपाद के साथ उनको लेने के लिए.
Of this there is no doubt.
इस बात का कोई संशय नहीं है.
So just in short, a little bit more to this purport.
थोड़ा सा तात्पर्य बचा है बस.
Unfortunately, mundane fools are accepted as educational leaders and are offered exalted posts for teaching irreligious principles to the general public.
दुर्भाग्य तो ये है कि संसारी मूर्खों को शैक्षिक नेता मान लिया जाता है.
This is what is propagating this secularism in the name of knowledge now is nothing but atheism. They dress like Hindus, at least the women do, the men don't. The men don't dress like Hindus, but the women still wear saris. But they are actually atheists almost. Practically they are atheists.
और ये जो सेकुलर के नाम पे पूरा अस्तित्व को बढ़ावा दिया जाता है कि जो हिंदू लोग हैं पुरुष लोग अभी पाश्चात्य देशों की तरह अपना सजावट करते हैं और कुछ महिलाएं साड़ी पहनती हैं.
So Srila Prabhupada says, this is explained in Srimad Bhagavatam 7531.
इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंध पांचवें अध्याय 31वें श्लोक में हुई है.
अंध यतंदर उपनिम यमाना. ब्लाइंड मेन आर ट्राइंग टू लीड अदर ब्लाइंड मेन.
अंधे लोग दूसरे अंधे लोगों का मार्गदर्शन कराने का प्रयत्न कर रहे हैं. ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं.
Yes. As Prahlad Maharaj was only 5 years old, but he was preaching like a wise old sage, you know, like a sannyasi. He was preaching, but only 5 years old.
Prahlad Maharaj, हालांकि 5 वर्ष की उनकी आयु है, परंतु वह एक बहुत ही बड़े, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति की तरह प्रचार कर रहे हैं.
Due to the immature understanding of such rascals, common men should not discuss Krishna's pastimes with the gopis.
अभक्त को तो भगवान
An anavoti should not even discuss his stealing sweet rice for his devotees.
अभक्त को तो भगवान द्वारा अपने भक्त के लिए खीर चुराने की भी विवेचना नहीं करनी चाहिए.
This is the purport to the pastime of Madhavendra Puri of the deity stealing. This is why Prabhupada mentioned that he stole the sweet rice for his devotee.
So Prabhupada is saying even non-devotees shouldn't even hear this because they will not understand.
ये तात्पर्य श्रीला माधवेंद्र पुरी पाठ के संदर्भ में आता है जब उनके लिए खीर का प्याला चुराया तो प्रभुपद बता रहे हैं अब भक्त को इस लीला की चर्चा नहीं करनी चाहिए.
So Prabhupada is saying it is warned that one meaning non-devotees should not even think about this thing. Well, devotees should relish these pastimes. Non-devotees shouldn't even think about it as they will be offenders.
ये आगाह किया जाता है इन बातों के विषय में कोई सोचे तक नहीं.
Although Krishna is the purest of the pure, mundane people thinking of Krishna's pastimes that appear immoral themselves become polluted.
यद्यपि कृष्ण शुद्धों में शुद्ध हैं, किंतु संसारी लोग कृष्ण की लीलाओं को अनैतिक मानकर स्वयं दूषित हो जाते हैं.
Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore never publicly discusses Krishna's dealings with the gopis.
इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के साथ कृष्ण के आचरणों की विवेचना कभी भी जनता के समक्ष नहीं करते थे.
He used to discuss these things, dealings only with three confidential friends.
वे इनकी चर्चा केवल अपने तीन अंतरंगी मित्रों से करते थे.
So that would be Ramananda Roy, Srupdam Manar Maharaj, who is the third one, Govinda.
Ramanand Roy, Swarup Damodar or Govinda.
So as far as I know, those are the three devotees.
जहाँ तक मुझे पता है ये तीन भक्त हैं.
And it is significant that when Mahaprabhu was engaged in very high harikatha with Ramananda Roy along the banks of the river, so that would have been Godavari, yes.
और चैतन्य महाप्रभु श्री रामानंद राय के साथ उन्होंने बहुत ही गोये हरिकथा.
That place is there. It's a very huge river, you know. It's my God, you know. It must be. Close to 1 kilometer wide there in that area of Vishakhapatnam. Rajmundry, South India. We have got one first class ISKCON temple there.
Rajmundry ke sthan pe jo Godavari nadi hai, bahut hi vishal nadi hai, lagbhag 1 kilometer iski chadai hai, aur wahan pe ek bahut hi sundar ISKCON mandir bhi hai.
It is across the river, this huge river, from the place where Ramananda Roy had his confidential discussions with Chaitanya Mahaprabhu.
ये मंदिर नदी के समीप है और इस जगह के समीप है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में वार्तालाप हुआ था.
On that very spot where the conversation took place, there is Godimath Temple.
और पूरे उस स्थान पे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय में वार्तालाप हुआ था वहाँ एक गौड़ीय मंदिर है.
Significance, what Prabhupada is stating here, that they were having this confidential discussion of Harikatha and Radha Krishna Lila, etc.
तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि वहाँ पे वह चर्चा कर रहे थे राधा कृष्ण लीला की और अन्य हरिकथा की.
So while engaged in this these talks, Mahaprabhu noticed there were some smarter Brahmins, they came within ear distance. Within hearing distance, some smarter Brahmins came.
तो जब वे इस विषय पे चर्चा कर रहे थे कुछ दूर से स्मार्ट ब्राह्मण इसको सुनने का प्रयास कर रहे थे.
So when these materialistic outsiders could hear his discussion, he stopped. Even they are Brahmins, but he stopped because they had the materialistic conception of truth.
और जब महाप्रभु ने देखा कि भौतिकवादी लोग इस हरी कथा को सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो महाप्रभु रुक गए. हालांकि वह ब्राह्मण थे परंतु उनका जो भौतिक बुद्धि पे थे.
He never discussed, Mahaprabhu never discussed Rasa Lila publicly as the professional reciters do, although they do not understand Krishna or the nature of the audience.
उन्होंने कभी भी रास लीला की व्याख्या जनता के समक्ष नहीं की जैसा कि पेशेवर वाचक करते हैं.
Nature of the audience means that the audience is completely contaminated and not fit to hear such things.
और जनता जो है जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है इसको सुनने के लिए.
In the Bible, even the Christians, in the Bible it says, do not cast pearls before swine. Pearls. Do not throw pearls before swine. You know, swine means pigs.
यहाँ तक कि बाइबल में भी कहा गया है कि सुअर के सामने मोती नहीं फेंकने चाहिए.
So don't discuss गोपी लीला in front of non-devotees. So this is Prabhupada's point.
तो गोपियों के संदर्भ में लीलाएं की चर्चा अब भक्तों के सामने नहीं करनी चाहिए.
However, Sri Chaitanya Mahaprabhu encouraged the public chanting of the holy name on a huge scale for as many hours as possible.
परंतु चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के पवित्र नामों के संकीर्तन को बड़े पैमानों पर घंटों तक चलाने के लिए प्रोत्साहित करते थे.
Anyone have any questions?
आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न?
Comments?
या टिप्पणी?
जगगुरु शिरोपाद की जय. ग्रंजना श्रीमा चैतन्य चरतमृत की जय. शिशि गोणिता की जय. जगन्नाथ बलदेव सुभद्र की जय. श्री कृष्ण बलराम श्री श्री राधिकुमार की जय. नित्य गो प्रेमानंदी हरे हरे बोल.